यरमिया अध्याय 29। अध्याय 29 वो पत्र है जो यरमिया ने बाबुल में प्रवास करने वाले यहूदियों को भेजा था। उनमें यरूशलेम का एक हाकिम दानियल भी था, अतः इसमें संदेह नहीं कि यरमिया का पत्र दानियल के सुपुर्द किया गया था। दानियल भी उस समय बंदियों में से एक था और ये पत्र उन सब के लिए था। इस समय यरमिया वयोवृद्ध हो चुका था, परंतु दानियल युवक ही था। यरमिया अध्याय 29 पद 1 से लेकर 3 तक। उसी समय यरमिया नबी ने इस आशय की पत्री उन पुरनियों और भविष्यद् वक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंधुओं में से बचे थे, जिनको नबूकदनेज़र यरूशलेम से बाबुल को ले गया था। ये पत्री उस समय भेजी गई जब यकोन्या राजा और राजमाता खोजे यहूदा और यरूशलेम के हाकिम जैसे दानियल आदि लोहार और अन्य कारीगर यरूशलेम से चले गए थे। ये पत्री शापान के पुत्र एलासा और हिलकया के पुत्र गर्माया के हाथ भेजी गई, जिन्हें यहूदा का राजा सिदकिया के बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के पास बाबुल को भेजा। एलासा और गर्माया इस पत्र को लेकर बाबुल गए थे। यरमिया अध्याय 29 पद 4 से लेकर 6 तक। उसमें लिखा था कि जितने लोगों को मैंने यरूशलेम में बंधुआ करके बाबुल में पहुंचवा दिया है, उन सबों से इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, घर बनाकर उसमें बस जाओ, बारियां लगाकर उसके फल खाओ, ब्याह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे बेटे बेटियां जन्माएं और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। झूठे नबियों द्वारा झूठी संतावना के विपरीत यरमिया यहोवा का सच्चा संदेश देता है। वहां बस जाओ, अपने अपने घर बना लो, अपने बगान लगा लो और परिवार बसा लो, क्योंकि तुम वहां काफी समय रहोगे, इसलिए अपनी जनसंख्या को कम न होने देना। यरमिया अध्याय 29 पद 7। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो। कहने का अर्थ ये है कि विद्रोह मत करना, परंतु उनके साथ शांति से रहना और शांति का यत्न करना। यरमिया अध्याय 29 पद 7 में आगे लिखा है, और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। यदि बाबुल में शांति बनी रहेगी तो तुम भी शांति में वास करोगे। यरमिया अध्याय 29 पद 8 से लेकर 10 तक। क्योंकि इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यद् वक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने न पाए, और जो स्वप्न वो तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की ये वाणी है। यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, और अपना ये मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। दानियल की पुस्तक के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, दानियल अध्याय 9 पद 1 और 2। मादी शयर्ष का पुत्र धारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यरमिया नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। यहां दानियल यरमिया की भविष्यवाणियों के संग्रह में विहित इस पत्र का उल्लेख कर रहा है। उन्हें पढ़कर और यरमिया की भविष्यवाणी को समझकर वो 70 वर्ष जिनकी यरमिया ने भविष्यवाणी की थी अब पूरे होने वाले थे। अतः उसने परमेश्वर की इच्छा जानने का प्रयास आरंभ कर दिया। मेरे लिए ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि बाइबल समय का किस प्रकार संयोजन करती है। यरमिया ने जब बाबुल में अप्रवासी यहूदियों को पत्र भेजा तब यरूशलेम का हाकिम दानियल बंदवाई में था और 70 वर्ष पश्चात भी दानियल वहां था। जब दानियल को ये बोध हुआ 70 वर्ष पूरे होने को है और घर लौटने का समय आ गया है, वो या तो 80 के अंतिम दशक या 90 के आरंभिक दशक की आयु में रहा होगा। आज मेरी भेंट एक 97 वर्षीय बद्र महिला से हुई। उसने कहा, जब मैं 15 वर्ष की थी तब परमेश्वर ने पहली बार मुझसे बातें की और मैं 82 वर्ष उसकी संगति में रही। मुझे जलन सी हुई, प्रभु की संगति में इतने वर्ष? मैंने कहा, मुझसे आप बातें कीजिए, मैं प्रभु के साथ आपकी संगति के अनुभव से कुछ सीखना चाहता हूं। उसके चेहरे से लाली टपक रही थी। कैसा सुंदर चेहरा! दाऊद ने कहा, भजन संहिता 1:1-3 पद, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ही ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मैंने आज 97 वर्ष के खिले हुए चेहरे को देखा। वो बहुत सुंदर थी, अति सुंदर। यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। 70 साल के बाद यरमिया अध्याय 29:11, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, अर्थात तुम्हारी गाथा का अंत अच्छा होगा। यदि तुम अपने विचार से चलोगे और बाबुल के राजा के विरुद्ध आवाज उठाओगे तो तुम्हारा अंत विनाशकारी होगा। यदि तुम मेरा कहा मानोगे और मेरे वचनों पर चलोगे तो मैं तुम्हारे लिए सोचता रहूंगा, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, मैं तुम्हारे बारे में सदैव चिंता करता हूं, तुम्हारे बारे में मैं केवल शांति की बात ही सोचता हूं, मैं तो तुम्हारी शांति की शुभकामना करता हूं, मैं तुम्हारे बुरे की कल्पना भी नहीं करता, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। हम भी कई बार बंदवाई में होते हैं या परेशानियों से घिरे होते हैं। हम सोचते हैं, ओ परमेश्वर मुझे भूल गया है, परमेश्वर मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। मेरे भाई या बहन, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सदैव आपके लिए चिंतित रहता है, परंतु परमेश्वर गंतव्य की ओर देखता रहता है। हमारी सामान्य भूल ये है कि हम तत्कालिक समाधान खोजते हैं और भावी परिणामों की ओर ध्यान नहीं देते। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी काम में अंतिम परिणाम सोचे बिना कूद पड़ते हैं। हम केवल उत्साह को देखते हैं, एक प्रकार के मनोरंजन को देखते हैं और कूद पड़ते हैं। परमेश्वर चेतावनी देते हुए कहता है, नहीं, ये पथ विनाश की ओर जाता है। मैं तुम्हारे ही विषय में सोच रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। मेरे मन में तुम्हारी शांति के विचार है कि तुम्हें उस अंत तक ले जाऊं जिसकी मैंने आशा की है। यरमिया अध्याय 29 पद 12। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। दानियल की पुस्तक अध्याय 9 में हम देखते हैं कि जब दानियल को यरमिया की भविष्यवाणी से ये बोध हुआ कि 70 वर्ष पूरे होने को है, तब उसने क्या किया? उसने उपवास रखकर प्रार्थना करना आरंभ कर दिया, क्योंकि यहोवा ने कहा था, तब तुम मुझे पुकारोगे। कब? 70 वर्ष के बाद। तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं सुनूंगा। देखिए दानियल किस प्रकार परमेश्वर के वचन पर चल रहा था। यरमिया अध्याय 29 पद 13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मेरे विचार में हमारी समस्या ये है कि हम परमेश्वर को आधे मन से खोजते हैं। ये हमारा स्वभाव है। हम परमेश्वर को संपूर्ण मन से नहीं खोजते हैं। परमेश्वर, यदि तू कहता है तो मैं यहां हूं, और यदि तू चाहे तो मेरे लिए कर सकता है, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। हम परमेश्वर के प्रति प्रायः बड़े ही निष्क्रिय स्वभाव रखते हैं। हम परमेश्वर को संपूर्ण मन से नहीं खोजते हैं। मेरे जीवन में कुछ ऐसे समय आए हैं जब मैं परमेश्वर के समक्ष वास्तव में अति निराश हो उपस्थित हुआ हूं, और मैं अचंभित हुआ कि परमेश्वर की उपस्थिति में निराश होकर उपस्थित होने के लिए क्या होता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो विषयों को एक ही कदम में पार करना चाहता हूं। परिस्थिति के प्रत्येक प्रहार से लौट कर आना सीखिए और देखिए कि ये कितना कारगर सिद्ध होता है। मेरे जीवन में ऐसे अवसर भी आए हैं जब परमेश्वर मुझे वास्तव में निराशा के स्थान पर लाया है, और मैं कह सकता हूं कि मैंने परमेश्वर को संपूर्ण मन से खोजा है। एक अवसर मेरी सबसे छोटी पुत्री की रोग अवस्था का था। वो हमारे जीवन की ज्योति थी। परमेश्वर ने उसे हमें एक विशेष उपहार स्वरूप प्रदान किया था। हमारे सारे बच्चे विशेष वरदान हैं। वे अति सौम्य हैं। हम हरेक के लिए परमेश्वर के आभारी हैं। परंतु ये सबसे छोटी पुत्री जब पैदा हुई थी, तब हम आयु में अधिक और समझ में परिपक्व थे, इसलिए हम उसकी उपस्थिति का अधिक आनंद ले पाए थे। जब उससे पहले बच्चे पैदा हुए थे, तब हम खुद ही नहीं जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं। ये वो ऐसी अवस्था थी कि प्राकृतिक विकास के कारण हम माता पिता बन गए थे। हमें किसी ने माता पिता होने का प्रशिक्षण नहीं दिया था, अतः हमारे बच्चों का सदाचारी और धर्मी होना परमेश्वर का अनुग्रह ही था, हमारी बुद्धिमानी का परिणाम नहीं। हम नहीं जानते थे कि हम क्या कर रहे थे, परंतु जब आपके पास चौथी संतान आती है, तब आप काफी कुछ सीख जाते हैं तथा आप आयु में और समझ में अधिक परिपक्व हो जाते हैं तथा आपका अनुभव भी बढ़ जाता है। वो हमारा आनंद और हमारे जीवन की ज्योति थी। उसे बहुत तेज बुखार था। वो दो दिन से तेज बुखार में थी। हम उसे गोद में लिए पूरी रात बैठे रहे और प्रभु से प्रार्थना करते रहे। मैं उसे गोद में लिए हुए था और वो बेहोश हो गई। मैंने सोचा वो मर जाएगी। उसका छोटा सा शरीर अकड़ गया था। मैंने सोचा सब समाप्त हो गया। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन से खोजना आरंभ कर दिया। मैं परमेश्वर के सामने निराश हो गया। मैंने कहा, परमेश्वर तू जानता है मैं इस छोटी बच्ची को कितना कीमती मानता हूं। इसके स्थान पर मैं अपना जीवन प्रसन्नता से देने के लिए तैयार हूं। प्रभु, इसे रोगी देखने से तो मैं अपने आप को रोगी देखना अच्छा समझता हूं। हे परमेश्वर, मैं इसके लिए अपना जीवन निछावर कर दूंगा, क्योंकि मैं इसे इतना अधिक प्यार करता हूं। परंतु प्रभु, यदि ये तेरी इच्छा और तेरी योजना है कि इसे अपने पास बुला ले, तो मैं इसे तुझे अर्पित करता हूं। ये तेरी ही तो पुत्री है, परंतु प्रभु, मैं उसे अब भी अपने पास चाहता हूं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि मैं परमेश्वर को संपूर्ण मन से खोज रहा था। मेरी पत्नी ने डॉक्टर से संपर्क कर लिया था। हम उसे लपेटकर डॉक्टर के पास भागे, परंतु इससे पूर्व कि हम डॉक्टर के पास पहुंचते, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी थी। उसका बुखार जाता रहा। वो मुस्कुरा रही थी, किलकारी भर रही थी और पहले जैसी सुंदर सी बच्ची हो गई थी। हमने उसे डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा, मुझे तो ये भली चंगी लगती है। उसने मेरी पत्नी से पूछा कि उसे टिटनेस का टीका कब लगा था। मेरी पत्नी ने कहा, याद नहीं। उसने कहा, समय गंवाने से कोई लाभ नहीं, आप यहां हो तो मैं टिटनेस का टीका लगा देता हूं। उसने मेरी बेटी को टिटनेस का टीका लगा दिया। परमेश्वर ने कहा, उस दिन तुम मुझे संपूर्ण मन से खोजोगे। बाइबल कहती है याकूब अध्याय 5:16, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम कितनी बार प्रार्थना में उत्साही होते हैं, हम कितनी बार परमेश्वर के सामने निराश होकर आते हैं, हम कितनी बार परमेश्वर को संपूर्ण मन से खोजते हैं। परमेश्वर ने कहा, उस दिन मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। वो नहीं चाहता कि हम आधे मन से उसके पास आए, वो चाहता है कि हम संपूर्ण समर्पण में उसके पास आए। यरमिया अध्याय 29:14-17 तक, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की ये वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको बरबस निकाल दिया है और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंधुआ करवा के निकाल दिया था, यहोवा की यही वाणी है। तुम कहते तो हो कि यहोवा ने हमारे लिए बाबुल में भविष्यत वक्ता प्रकट किया है, परंतु जो राजा दाऊद की गद्दी पर विराजमान है और जो प्रजा इस नगर में रहती है, अर्थात तुम्हारे जो भाई तुम्हारे संग बंधुआई में नहीं गए, उन सभी के विषय सेनाओं का यहोवा ये कहता है, सुनो, मैं उनके बीच तलवार चलाऊंगा और महंगी करूंगा और मरी फैलाऊंगा और उन्हें ऐसे घिनौने अंजीरों के समान करूंगा जो निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते। सिदकिया के दरबार में दिए गए परमेश्वर के वचन का ये संदर्भ है, जिसमें उसने कहा था कि वे जो बंधुआई में ले जाए गए हैं अच्छे अंजीर हैं और वे जो बचे रह गए हैं वे सड़े अंजीर हैं और उनका विनाश होगा। उनकी कोई कीमत नहीं है, वे किसी काम के नहीं है। यरमिया अध्याय 29:18-21 तक, मैं तलवार महंगी और मरी लिए हुए उनका पीछा करूंगा और ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे और उन सब जातियों में जिनके बीच में उन्हें बरबस कर दूंगा, उनकी ऐसी दशा करूंगा कि लोग उन्हें देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उनका अपमान करेंगे और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे, क्योंकि जो वचन मैंने अपने दास भविष्यत वक्ताओं के द्वारा उनके पास बड़ा यत्न करके कहला भेजे हैं उनको उन्होंने नहीं सुना। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए हे सारे बंधुओं जिन्हें मैंने यरूशलेम से बाबुल को भेजा है, तुम उसका ये वचन सुनो। परमेश्वर आहाब से कहता है, यरमिया अध्याय 29 पद 21। कोलाया का पुत्र आहाब और मसाया का पुत्र सिदकाया, ये लोग कौन है हम नहीं जानते। धर्मशास्त्र में इनका कहीं और उल्लेख नहीं है। ये लोग झूठे नबी थे। वे यहोवा के नाम में झूठी भविष्यवाणी दे रहे थे। परमेश्वर इनके विरोध में कहता है, वो राजा आहाब नहीं है और ना ही सिदकिया आने वाला समय का परमेश्वर का भविष्यत वक्ता है। ये कोई दो व्यक्ति हैं। यरमिया अध्याय 29 पद 21 में आगे लिखा है, जो मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी उन्हें सुनाते हैं, उनके विषय इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि सुनो, मैं उनको बाबुल के राजा नबुकदनेस्सर के हाथ में कर दूंगा और वह उनको तुम्हारे सामने मार डालेगा। ये दोनों झूठे नबी थे। यरमिया अध्याय 29 पद 22। और सब यहूदी बंधुए जो बाबुल में रहते हैं उसकी उपमा देकर ये शाप दिया करेंगे, यहोवा तुझे सिदकिया और आहाब के समान करे। यदि कोई किसी को श्राप देगा तो कहेगा, यहोवा तुझे आहाब के समान कर दे। यरमिया अध्याय 29 पद 22 में आगे लिखा है, जिन्हें बाबुल के राजा नबुकदनेस्सर ने आग में भून डाला। नबुकदनेस्सर की अपनी ही विधि थी कि यदि उसे किसी से छुटकारा पाना है तो उसे आग की भट्टी में झोंक दे। वो सार्वजनिक रूप से ऐसा किया करता था। ये बड़ी ही ध्यान देने योग्य बात है कि यरमिया उस भट्टी का उल्लेख कर रहा है। उस भट्टी ने आहाब और सिदकिया को भस्म कर डाला, परंतु शद्रक मेशक और अबेदनगो को वो जला नहीं पाई थी, जिन्हें उसने आग में भून डाला। इस कारण ये किसी को श्राप देने का एक प्रतीक बन गया था, यहोवा तुझे सिदकिया के समान कर दे, अर्थात वो तुझे आग में भून दे। ध्यान देने योग्य बात तो ये है कि इब्रानी भाषा में श्राप के शब्द है ही नहीं। यदि वे किसी को बुरा भला कहना चाहते हैं तो उन्हें अंग्रेजी के शब्द प्रयोग करना होता है। उनके पास कसम खाने के शब्द भी नहीं है। जब हमें ये जानकारी दी गई तब हम विस्मित हुए। एक रात हम हदासा अस्पताल गए जो स्कोपस पर्वत पर स्थित है। हम वहां कमरे में खड़े थे तो हमने एक यहूदी डॉक्टर को अंग्रेजी में भला बुरा कहते सुना। मैंने अपनी पत्नी से कहा, ये सच ही है कि उनकी भाषा में ऐसे शब्द है ही नहीं, इसलिए ये डॉक्टर अंग्रेजी बोल रहा है। जब उसने हमें देखा तो उसे बड़ी लज्जा हुई। मेरे विचार में उनकी भाषा में श्राप के शब्द ना होना भाषा का सौंदर्य है। इस कारण उन्हें अंग्रेजी की भाषा का प्रयोग करना होता या अन्य कोई भाषा का। इब्रानी में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हां, वे कह सकते हैं, यहोवा तुझे सिदकिया के समान बनाए। किसी से ऐसा कहना अत्यंत बुरा विचार है, यहोवा तुझे आग में भून दे। यरमिया अध्याय 29 पद 23। क्योंकि उन्होंने इसराइलियों में मूर्ता के काम किए, अर्थात अपने पड़ोसियों की स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया। यहां वो इन दोनों के पापों का उल्लेख कर रहा है। यरमिया अध्याय 29 पद 23 में आगे लिखा है, और बिना मेरी आज्ञा पाए मेरे नाम से झूठे वचन कहे। परमेश्वर इनके अपराधों का अनावरण कर रहा है। वे व्यभिचारी हैं और मेरे नाम में झूठी नबुवत करते हैं। यरमिया अध्याय 29 पद 23 के अंत में लिखा है, इसका जानने वाला और गवाह मैं आप ही हूं, यहोवा की यही वाणी है। ये बड़ी गंभीर बात है। यहोवा कहता है, मैं उनके काम जानता हूं, मैं गवाह हूं। यीशु ने कलीसियाओं को भी बार बार यही कहा, मैं तुम्हारे काम जानता हूं, मैं तुम्हारी युक्तियां जानता हूं। जब परमेश्वर आपके विरुद्ध गवाह हो तो आप गंभीर समस्या में हैं। यरमिया अध्याय 29 पद 24 से लेकर 26 तक। और नहेलामी शमाया से तो ये कहे कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने यूं कहा है, इसलिए कि तूने यरूशलेम के सब रहने वालों और सब याजकों को और यसाया के पुत्र सपन्या याजक को अपने ही नाम की इस आशय की पत्री भेजी कि यहोवा ने यहोयादा याजक के स्थान पर तुझे याजक ठहरा दिया, ताकि तू यहोवा के भवन में रखवाला होकर जितने वहां पागलपन करते और भविष्यद्वक्ता बन बैठे हैं उन्हें काट में ठोके और उनके गले में लोहे के पट्टे डाले। जब यरमिया का पत्र बाबुल पहुंचा, तब इस झूठे नबी ने याजकों को पत्र लिखा, तुम्हें यरमिया को बंदीगृह में डाल देना चाहिए, उसे काट में बंद कर दो। यरमिया अध्याय 29 पद 27 से लेकर 31 तक। सो यरमिया अनातोती जो तुम्हारा भविष्यत वक्ता बन बैठा है, उसको तूने क्यों नहीं घुड़का? उसने तो हम लोगों के पास बाबुल में ये कहला भेजा है कि बंदवाई तो बहुत काल तक रहेगी, सो घर बनाकर उनमें रहो और बारियां लगाकर उनके फल खाओ। ये पत्री सपन्या याजक ने यरमिया भविष्यत वक्ता को पढ़ सुनाई। तब यहोवा का ये वचन यरमिया के पास पहुंचा कि सब बंधुओं के पास ये कहला भेज, यहोवा नहेलामी शमाया के विषय यूं कहता है। नहेलामी शमाया ने वो पत्र लिखा था। यरमिया अध्याय 29 पद 31 और 33। शमाया ने मेरे बिना भेजे तुमसे जो भविष्यवाणी की और तुमको झूठ पर भरोसा दिलाया है, इसलिए यहोवा यूं कहता है कि सुनो, मैं उस नहेलामी शमाया और उसके वंश को दंड दिया चाहता हूं। उसके घर में से कोई इन प्रजाओं में न रह जाएगा, और जो भलाई मैं प्रजा की करने वाला हूं उसको वो देखने न पाएगा, क्योंकि उसने यहोवा से फिर जाने की बातें कही है, यहोवा की यही वाणी है। शमाया के वंश में से एक भी न बचेगा, ऐसा दंड यहोवा उसको देगा।